शान के सवाल की वजह से आरवी उसे नाराज थी। वहीं आरवी के नज़रअंदाज करने की वजह से शान का गुस्सा भड़क उठा था। उसने आरवी को धमकी दी तो वो गाड़ी में बैठ तो गई, पर गुस्से में मुंह फुलाए विंडो से बाहर देखने लगी। शान भी अभी बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद घर के बाहर गाड़ी रुकी तो आरवी बिना उसके तरफ देखे ही गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर चली गई। शान ने एक नज़र उसको देखा, फिर वहां से निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही वो काम में इतना बिजी हो गया कि बाकी किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा। रेहान और रश्मि सेट पर पहुंचे और काम में लग गए, पर रश्मि की निगाहें गाहे बगाहे रेहान की तरफ मुड़ रही थी, जिससे वो परेशान हो रही थी। पर करती क्या, तो खुद को काम में घुसा लिया। लंच ब्रेक में रेहान अपनी प्लेट लेकर एक टेबल पर आ गया तो रश्मि भी अपना लंच लेकर वहीं आ गई। रेहान सृष्टि की वजह से कुछ परेशान था, उसने तो सुबह से रश्मि पर ध्यान ही नहीं दिया था। रश्मि उसके सामने बैठ गई, पर रेहान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी ही सोच में गुम था। रश्मि सुबह से ये नोटिस कर रही थी कि वो कुछ खोया खोया सा है। उसने उसके आगे हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर, यहीं हूँ या छुट्टी पर घूमने चले गए? उसकी आवाज़ रेहान के कानों में पड़ी तो उसने चौंक कर उसे देखा। रश्मि ने भौंचकाकर आंखों से ही इशारा किया, क्या हुआ? उसका सवाल समझते हुए रेहान ने नामे सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। तो किसके ख्यालों में खोए हुए थे? मैं यहाँ आई और तुमने मुझे देखा तक नहीं। रश्मि ने नाराज़गी से मुंह फुलाया। उसकी बात सुनकर रेहान के भाव एकदम से बदल गए। उसने शरारती मुस्कान लगों पर सजाकर उसको देखते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें देखूं? पहले तो रश्मि आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से उसको देखने लगी, फिर उसकी शरारत को समझते ही उसकी आंखें गुस्से की छोटी छोटी हो गई। उसने उसको घूरते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, तो ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। पर तुमने कहा तो यही था, रेहान ने एक बार फिर उसको छेड़ा। रश्मि गुस्से से उठ खड़ी हुई और दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारा ना दिमाग ही खराब हो रखा है, मेरी ही गलती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो जैसे ही गुस्से में जाने के लिए मुड़ी, रेहान ने उसके कलाई पकड़कर उसको रोक लिया, अब तुम्हें और तंग नहीं करूँगा, बैठ जाओ। रश्मि मुंह बनाकर उसको देखने लगी, अब वो भी इतरा रही थी, भाव खा रही थी। रेहान ने जब इंसिस्ट किया तो वो बैठ गई। उसने आगे से प्लेट हटाई, फिर टिफिन दोनों के बीच में रखते हुए बोली, उसे छोड़ो और ये खाओ। क्यों, ये तो तुम्हारा लंच है ना? रेहान ने हैरान परेशान निगाहों से उसको देखते हुए सवाल किया। रश्मि कुछ सेकंड चुप रह गई, फिर सहजता से बोली, मम्मी ने खाना ज़्यादा दे दिया है, अकेले नहीं खा पाऊंगी तो वेस्ट होने से बेहतर है ना कि तुम खा लो। उसकी बात सुनकर रेहान उसको शक भरी निगाहों से देखने लगा तो रश्मि ने चिढ़ते हुए कहा, तुम खाते हो या नहीं? अगर ज़्यादा भाव खाओगे तो किसी और के पास चली जाऊंगी, बहुत लोग हैं यहाँ। सच सच बताओ, ज़्यादा आया है इसलिए मुझे खिला रही हो या फिर मेरे लिए लेकर आई हो? रेहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। रश्मि के भाव बदल गए जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए झूठी नाराज़गी दिखाई। मैं तुम्हारे लिए क्यों लेकर आऊँगी? ज़्यादा है इसलिए पूछ लिया। खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ, मैं किसी और को खिला लूँगी अपने साथ। ठीक है, तो अब तुम किसी और को ही खिला लो, रेहान ने करते हुए कहा और प्लेट वापस अपने सामने करके जैसे ही निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, रेहान ने उसकी कलाई पकड़ ली और खिजीते हुए बोली, आम खाओ ना यार, क्यों गुठलियाँ गिनने में लगे हो? खाना दे रही हूँ तो खा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे लिए लाई थी या नहीं, दे तो तुम्हें ही रही हूँ ना। मुझे फ़र्क पड़ता है, रेहान ने गंभीरता से कहा और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। रश्मि मुँह लटकाए उसे देखने लगी। रेहान निवाला उनमें डालने ही वाला था कि रश्मि एकदम से बोल उठी, तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, अब तो नाटक छोड़ो और खा लो। रश्मि ने मुँह लटकाकर उसको देखा। उसकी बात सुनकर रेहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, और क्यों लाई हूँ मेरे लिए लंच? रश्मि शायद इस सवाल के लिए पहले से तैयार थी, उसने झट से जवाब दिया, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के इकलौते देवर हो, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। बस क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का देवर हूँ इसलिए तुम मेरे लिए लंच लाई? रेहान ने गंभीरता से सवाल किया। रश्मि ने बड़ी ही बेफिक्री से कंधे उचका दिए, हाँ बिल्कुल, और क्यों लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए लंच? ठीक है तो तुम खाओ, मुझे नहीं खाना, रेहान ने निवाला अपने मुंह में डाल लिया। रश्मि का मुंह हैरानी से खुल गया, उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते हुए कहा, क्या हुआ अब तुम्हें, तुमने वो क्यों खाया? रेहान ने प्लेट से दूसरा निवाला मुंह में डालते हुए कहा, क्योंकि मुझे अपनी भाभी की दोस्त का कोई एहसान नहीं चाहिए और ना ही इस रिश्ते के नाते तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। क्या है, क्या नाटक लगाया हुआ है ये तुमने? रश्मि अब परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। रेहान ने गंभीरता से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इतने वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ में काम करते हैं, अब भी तुम्हें हमारे बीच बस वही एक रिश्ता नज़र आता है, और कुछ नहीं है हमारे बीच? उसकी बात सुनकर रश्मि उसको कंफ्यूज निगाहों से देखने लगी तो रेहान ने आगे कहा, क्या इतने वक्त में मैं तुम्हें इस लायक भी नहीं लगा कि तुम मुझे अपना दोस्त कह सको? रेहान ने संजीदगी से अपनी बात कही, उसकी निगाहें रश्मि पर टिकी हुई। वहीं रश्मि भी कुछ हैरान परेशान सी उसको देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो रेहान वहां से जाने लगा। रश्मि के दिमाग में उसकी कही बात घूमने लगी। रेहान के साथ उसका अब तक का सफर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। रेहान कुछ दूरी पर गया ही था कि उसके कानों में रश्मि की आवाज़ पड़ी, मैं इतनी जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाती,
आरवी से मेरी दोस्ती बचपन से है। उसके बाद ना किसी से दोस्ती की और ना ही करने की जरूरत ही पड़ी। वक्त लगेगा मुझे। किसमें? रेहान ने उसकी तरफ पलटते हुए सवाल किया तो रश्मि ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें अपना दोस्त मानने में मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझने की, लेकिन ऐसे ही कुछ दिनों के साथ में मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? वैसे भी दोस्ती जबरदस्ती थोड़े ना की जाती है, वो तो अपने आप ही हो जाती है। हम साथ ही रहते हैं, अगर दोस्ती होनी होगी तो खुद ही हो जाएगी। अब आकर खाना खाओ, भूख लगी है मुझे। रेहान कुछ पल खामोशी से उसको देखता रहा, फिर उसके पास चला आया तो रश्मि खुश हो गई। दोनों ने साथ में लंच किया, फिर अपने अपने काम में लग गए। शाम रात को थोड़ा देर से घर आया। आज भी आरवी उसका इंतजार कर रही थी, पर आज उसने शान को देखकर कुछ नहीं कहा, चुपचाप किचन में चली गई। शान ने भी कुछ नहीं कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वापस नीचे आया तो आरवी ने उसकी प्लेट लगा दी, फिर दो चेयर छोड़कर खुद भी बैठ गई। शांति से उन्होंने डिनर किया, फिर आरवी किचन में चली गई। कुछ देर बाद कमरे में आई तो शान बेड पर अपनी साइड बैठा हुआ था। शान की निगाहें आरवी की तरफ उठी, पर आरवी ने निगाहें फेर ली, कपड़े चेंज करके आई, फिर बेड की जगह सोफे की तरफ बढ़ गई। शान सब खामोशी से देख रहा था। जैसे ही उसने आरवी को सोफे की तरफ बढ़ते देखा, वो तुरंत बेड से उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। अगले ही पल आरवी के कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा तो शान ने उसकी हथेली को पकड़कर उसको रोक लिया था। शान ने सख्त निगाहों से उसको देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो?
सोने जा रही हूँ, हाथ छोड़िए, मुझे नींद आ रही है, आरवी ने सपाट लहजे में जवाब दिया और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगी। पर शान ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसको घूरते हुए बोला, वहाँ कहाँ सोने जा रही हो? सोफे पर सोने जा रही हूँ, आपको क्या दिक्कत है, हाथ छोड़िए मेरा, आरवी ने झुंझलाते हुए जवाब दिया और उसको घूरने लगी। एक बार फिर शान ने सख्ती से सवाल किया, सोफे पर क्यों सोने जा रही हो? बेड पर सोने में क्या इशू है आज तुम्हें? रोज तो वही सोती हो। इशू है मुझे, मुझे उस जगह जाना ही नहीं जहाँ आप हैं, तो जाइए अपने बेड पर जाकर सोइए और मुझे भी सोफे पर चैन से सोने दीजिए। आरवी अब गुस्से से भड़क गई, पर शान ने गंभीरता से और शांति से सवाल किया, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें, नज़रअंदाज कर रही हो मुझे, क्या नाटक लगाया हुआ है तुमने, हुआ क्या है जो ऐसे बिहेव कर रही हो?